सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्तानं
नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवमङ्गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवलीभणिदम्।
ये कुंदकुंद आचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के पुण्य पाप अधिकार के हम 149 वाली गाथा जो है उसको हम देख रहे हैं। यहाँ ये बात चल रही है कि ये दोनों जो है वो निषेध करने योग्य है, ये बात अभी यहाँ पर चल रही है। पहले तो कहा था कि दोनों ही समान है, कुशल है और दोनों ही संसार में दाखिल करने वाले हैं, ये बात अपनी हो गई थी। अभी दोनों ही यहाँ निषेधने योग्य है, ये बात चल रही है और हम पृष्ठ क्रमांक 59 पर आए। आत्मा ज्ञानी थयो थको, ये लास्ट पैराग्राफ है ना। आत्मा ज्ञानी थयो थको उदयमा आवती बधी कर्म प्रकृति ने, एटले के ते काले थता शुभाशुभ भाव ने। देखो यहाँ कर्म प्रकृति का अर्थ बारंबार यहाँ बहुत स्पष्ट करने के लिए बताया कि शुभाशुभ भाव जब जीव के उत्पन्न होते हैं तब निमित्त रूप से वो कर्म होंगे, उसकी बात नहीं है। यहाँ मूल बात तो शुभाशुभ भावों की है। परमार्थ बुरी जानी ने तेनी साथे राग तथा संसर्ग करतो नथी। कौन आत्मा, कयो ज्ञानी हुआ है ऐसा आत्मा शुभाशुभ भाव थाय छे तेने बुरा जानी ने एम कहूं, एनो अर्थ जे थयो के भाव थाय छे खरा, जो न थाय तो वितराग होय। तेथी थोड़ा शुभ भाव छे तेने बुरा एटले अहित रूप जानी ने एनाथी एकत्व करतो नथी। परमार्थे बुरी जानी ने एम कहूं, त्या कोई एम अर्थ काढ़े छे के व्यवहारे सारी जानी ने यानि अपने इच्छा के अनुसार उसका अर्थ निकालना कहते ना, यानि अभी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं और घर में कोई कार्यक्रम चलता हो और अपनी घर की पत्नी जो है, मतलब घर की पत्नी है ना कि पत्नी जो हो, उसके सामने वो सबको बोलेंगे कि आप सब लोग इतने स्याने हो, अच्छे हो, आपने इतना सहकार किया है, तो ये इसमें से ऐसा अर्थ है तो मैं मूर्ख हूँ, मैं असहकारी हूँ, ऐसा आप सबके सामने मेरा इज्जत निकालना चाहते हो करके वो झगड़ा करें। तो ये ऐसी ही बात है। परमार्थे बुरु जानी ने, इसका अर्थ व्यवहार सारी जानी ने ऐसा निकालते हैं, ऐसा कह रहे हैं। देखो देखो क्या कह रहे परमार्थ बुरी जानी ने एम त्या कोई एम अर्थ काढ़े के व्यवहारे सारी जानी न तो ते बराबर नथी, ए जुदी वस्तु छे કે શુભ ને વ્યવહાર હે ઠીક કહેવાય, પણ અશુભ ને પણ વ્યવહાર હે ઠીક કેમ કહેવાય? ક્યોકે દોનો કી બાત ચલ રહી ને, બંધન ની અપેક્ષા હે તો બંને સમાનપણે અઠીક જ છે. વ્યવહારે ઠીકનો અર્થ જ પરમાર્થે ભૂલી સમજવું જોઈએ. તેથી અહીં કહે છે કે જ્ઞાની તેની સાથે રાગ એટલે ચિત્તમાં ઊંડે ઊંડે પણ શુભાશુભ પ્રત્યેનો રાગ, અને સંસર્ગ એટલે વાણી દ્વારા તેની પ્રશંસા, અને કાયા દ્વારા એ ઠીક છે એમ હાથ વગેરેની ચેષ્ટા થાય એવા ભાવ કરતો નથી. લ્યો આવું ઝીણું છે એને પ્રશંસા, વાણી કે દ્વારા પ્રશંસા કરે ઓર હાથ કે દ્વારા ભી ઉસકો એને હા બહુ અચ્છે હૈ, એ તો એ વાણી હાથ દ્વારા બોલ રહે હો, એસા કરતે ના લોકો. અરે જન્મ મરણના 84 ના અવતાર કરી કરીને જીવ મરણ તોલ થઈ ગયો છે. એને કાંઈ સુધ નથી, જાણે હજી થાક ન લાગ્યો ન હોય તેમ સ્વર્ગાદિને ઈચ્છે છે, ભવને ઈચ્છે છે, પરંતુ ભાઈ ભવ માત્ર દુઃખરૂપ છે. સ્વર્ગનો ભવ હોય તે પણ દુઃખરૂપ જ છે. તેથી તો યોગસ્વરમાં કહ્યું છે કે ચાર ગતિ દુઃખ તે ડરે તો તજ સૌ પરભાવ. ક્યાં કહેતે હૈ, અગર ચારેય ગતિ મેં દુઃખ હૈ, અગર તું ચારોય ગતિ સે ડરતા હૈ તો એ પરભાવ જો તેરે ચલ રહે હૈ સબકો તું છોડ દે. લેકિન ઇસ જીવ કો કોઈ ગતિ દુઃખરૂપ લગતી નહીં હૈ, વહી પર્યાય ઉસકો અચ્છી લગતી હૈ. ચારે ગતિ દુઃખમય છે, નરક દુઃખરૂપ છે, ભય યોગ્ય છે, અને સ્વર્ગ સુખરૂપ છે. ડરવા યોગ્ય નથી, ડરવા યોગ્ય નથી એમ નથી. આમાં તો એમ કહ્યું છે કે ભવ માત્રથી ભય રાખીને પરભાવ એટલે શુભાવ શુભાશુભ ભાવ તજી દે, અને એક સ્વરૂપનો અનુભવ કર. ભગવાન આત્મા સ્વરૂપથી આનંદનું નિધાન છે, એના આનંદના સ્વાદની આગળ ધર્મીને ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસન પણ સડેલા તરણા જેવા તુચ્છ અને ફીકા લાગે છે. સમજાણું કાંઈ? આય કહે છે આત્મા અરાગી જ્ઞાની થયો થકો એ બંનેને શુભ અને અશુભાવોને બુરા અહિતરૂપ જાણી તેની સાથે રાગ અને સંસર્ગ કરતો નથી. ભાવાર્થ ઉપરનું પ્રવચન. હાથીને પકડવા હાથણી રાખવામાં આવે છે. હાથી કામાંધ થયો થકો તે હાથણી રૂપી કૂટણી સાથે રાગ તથા સંસર્ગ કરે છે, તેથી પકડાઈ જઈને પરાધીન થઈને દુઃખ ભોગવે છે. જો હાથીને પકડવા મોટો ખાડો કરીને એના પર બાસ નાખી એને કપડાથી ઢાંકી દે છે, કામાંધ વિષાંધ હાથી હાથણીની પાછળ દોડતો દોડતો ખાડા સુધી આવે એટલે તાલીમ પામેલી હાથની બાજુ પરથી ખસી જાય અને હાથી ખાડામાં પડી જાય, પછી હાથીને પકડી લેવામાં આવે. આ પ્રમાણે હાથી હાથણી સાથે રાગ અને સંસર્ગની ઈચ્છાથી પકડાઈ જઈને પરાધીન થઈને દુઃખ ભોગવે છે. અને જો ચતુર હાથી હોય તો તેની સાથે રાગ તથા સંસર્ગ કરતો નથી. ચતુર હાથી હાથણીના સાનુકૂળ ભાષા હાવભાવ કે ચેષ્ટાથી લલચાતો નથી. યાની એ જ્ઞાની કો બતાય, જ્ઞાની કે એસે ઉદય આતે હૈ સંયોગ આતે હૈ ફિર ભી વો ઉસસે લલચાતા નહીં હૈ, દૂર રહેતા હૈ. તેવી રીતે અજ્ઞાની જીવ કર્મ પ્રકૃતિને સારી સમજીને તેની સાથે રાગ તથા સંસર્ગ કરે છે, તેથી બંધમાં પડી પરાધીન થઈને સંસારના દુઃખ ભોગવે છે. જો ભાષામાં તો કર્મ પ્રકૃતિ લીધી છે, પણ એનું કારણ જે ભાવ કર્મ તેને પણ ભેગું સમજી લેવું, આહા અજ્ઞાની શુભાશુભ કર્મ સાથે રાગ અને સંસર્ગ કરે છે, તેથી બંધનમાં પડી પરાધીન થઈને સંસારના દુઃખ ભોગવે છે. કર્મ પ્રકૃતિ અને ભાવ કર્મ શુભ હો કે અશુભ હો, બંને બંધ સ્વભાવ જ છે. ભલા તો કોઈ નથી, અબંધ રૂપ તો કોઈ નથી, છતાં અજ્ઞાની શુભને સારું જાણી એમાં પ્રેમમાં પડીને બંધાય છે. મિથ્યાત્વથી બંધાઈને તે નરક અને નિગોદના અકથ્ય પારાવાર દુઃખને ભોગવે છે. અને જો જ્ઞાની હોય તો તેની સાથે રાગ તથા સંસર્ગ કદી કરતો નથી, ચાહે તો શુભભાવ હો કે તેનું નિમિત્ત દ્રવ્ય કર્મ પ્રકૃતિ હો. જ્ઞાની એની સાથે પ્રેમ કરતો નથી, સંસર્ગ કરતો નથી, વાણી દ્વારા પણ શુભભાવ ભલે ભલો છે, હિતરૂપ છે એમ કહેતો નથી, કેમ કે એની દ્રષ્ટિ તો એક શુદ્ધ ચૈતન્ય ઉપર જ ચોંટેલી છે. વ્યવહારથી કદાચિત એમ કહે કે બીજું કાંઈ, એટલે પાપ ક્રિયા કરતા કરતા દેવગુરુ શાસ્ત્રની કરવા કરતા દેરીવાર, એટલે શું કે બીજું કંઈ, એટલે પાપ ક્રિયા કરવા કરતા દેવગુરુ શાસ્ત્રની ભક્તિ કરવી ઠીક છે, પણ એ તો વ્યવહારની વાત થઈ. નિશ્ચયથી તો તે બેમાંથી એકેને સારો માનતો નથી અને કહેતો પણ નથી. હા, બેમાંથી અને દો અપેક્ષા લગ સકતી હૈ, એક પાપ ઓર પુણ્ય, એસે દોનો પરિણામ, શુભ ઓર અશુભ પરિણામ, ઓર એક દ્રવ્ય કર્મ ઓર ભાવ કર્મ દોનો. આખો દિવસ સંસારના કામમાં, વેપાર ધંધા આદિમાં અને બાયડી છોકરા સાચવવામાં મશગુલ રહે, પણ એમાં ક્યાં આત્મા છે? રાગ માત્રને બુરો જાણી તેને ગૌણ કરી આખો ભગવાન નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય રસ, નિરાકુળ આનંદના રસનો કંદ પ્રભુ આત્મા છે એની દ્રષ્ટિ કરવી તે કર્તવ્ય છે. જો આ ધર્મીનું કર્તવ્ય છે, રાગ ધર્મીનું કર્તવ્ય નથી. હવે આવું ભેદ જ્ઞાન કઠણ પડે એટલે ઓલું વ્રત કરો, ભક્તિ કરો, જાત્રા કરો, વંદના કરો ઇત્યાદિ એને સુગમ એટલે સહેલું થઈ પડ્યું છે. અનાદિની ટેવ પડેલી છે ને, આવે છે ને કે એક બાર બંધે જો કોઈ, તાહી નરક પશુ ગતિ નહીં હોય. એ સમજમાં આવ્યા? એ પૂજા મેં એસી બાત આતી હૈ. હા,
પૂજા કહેને વાલોં કો તો પતા હોના ચાહીએ. હા મિલિંદભાઈ, લક્ષ્મી કો પતા હોગા?
એક બાર બંદે જો કોઈ, તાહે નરક પશુ ગતિ નહીં હોઈ.
કિસકી વંદના કરને કી બાત હૈ? હા હા, નિર્વાણ ક્ષેત્ર કી બાત હૈ, નિર્વાણ ક્ષેત્ર કી પૂજા મે આતા હૈ.
નહીં નહીં,
તો કિસ મે આતા હૈ?
નિર્વાણ મે નહીં હૈ બોલા, ये दूसरे में 24 तीर्थंकर की पूजा है, इसमें किसमें होगा वो? तू आगे पढ़, मैं ढूंढता हूँ जब तक.
निर्वाण क्षेत्र में ही देख लेना.
निर्वाण क्षेत्र? हाँ
हाँ, वही तो. शिखर जी के जो एक बार भाव सहित वंदना करता है वो नरक पशुगति नहीं होती, ऐसा आता है उसमें. देखो, पर नरक पशु न था एमा दी शू वड़ियो. શુભભાવ હોય તો એકાદ ભાવ સ્વર્ગમાં જાય, એકાદ ભાવ તીવ્ર દુઃખથી બચી જાય, પણ નરક અને નિગોદના ભાવ ઘટ્યા વિના, એનો નાશ થયા વિના ભાવ ભ્રમણ કેમ મળશે બાપુ? કોઈ કહે કે સમ્ય છીકરની આટલી યાત્રા કરે તો ભાવ ઘટે, ધૂળે ન ઘટે સાંભળને. લાખ કરોડ યાત્રા કરે શત્રુંજયની તોય શું? કેટલી યાત્રામાં મોક્ષ હૈ ગેરંટી આપકી?
99.
અચ્છા, યહાં તો લાખ કરોડ કી વાત કહી. અંદર ચૈતન્યના નાથની યાત્રા ન કરે તો ભવ ન ઘટે ન મટે.
देखो ये जो अभी हमने देखा था ना, एक बार बंदे जो कोई, ये निर्वाण कांड जो है उसमें आता है.
निर्वाण कांड में है कि निर्वाण क्षेत्र की पूजा में है?
निर्वाण क्षेत्र पूजा, मैं निर्वाण कांड ही समझा इसलिए मैंने मना किया. निर्वाण क्षेत्र पूजा में है ये. देखो यहाँ ऐसा लिखते हैं कि बीसो सिद्ध भूमि जा ऊपर शिखर समेत महागिरि भू पर, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु न गति नहीं हो. अभी ये तो आपने पढ़ लिया, आगे जाओ.
ये हो गया.
एम तो
त्रण लोकना नाथ तीर्थंकर देवना समो शरण मा अनंत वार गयो, अनंत वार साक्षात दिव्य ध्वनि सांभळी मणिरत्न थी भगवान नी पूजा करी, पण एथी शुं भव तो उभो छे, केम के ए तो शुभ भाव हतो धर्म न हतो. आथी एम न समझवुं કે શુભભાવ છોડીને અશુભ કરવું, પરંતુ ભાઈ તને જે અનાદિથી શુભભાવની રૂચિ છે તેનો ત્યાગ કરવો. કિસકા ત્યાગ કરના? શુભભાવ કા? શુભભાવ કી રૂચિ કા? શુભભાવમાં અમે ધર્મ કરીએ છીએ એવી માન્યતા વિપરીત છે. મિથ્યાત્વનું શલ્ય યહી મિથ્યાત્વ રૂપી શલ્ય હૈ કે શુભરાગ કરને સે મેં ધર્મ કર રહા હું એ માન્યતા ચાલ રહી હૈ. શુભરાગ કા નિષેધ નહીં હૈ. શુભરાગ તો આયેગા, જ્ઞાની કો ભી આયેગા, મુનિયો કો ભી આયેગા, ઉસકા નિષેધ નહીં હૈ. પરંતુ ઉસકી રુચિ જો હૈ, ઉસકા સ્વામિત્વ હૈ, ઉસસે ભલા હો રહા હૈ, ધર્મ કર રહા હું, મેં ચાહું જૈસા કર સકતા હું, મેં ઉસકો પલટા સકતા હું, યે સારી જો માન્યતા હૈ વો મિથ્યાત્વ હૈ. अब अगली गाथा हम 150 नंबर की गाथा पढ़ेंगे. वहां कहते अथ उभयम कर्म बंध हेतुम प्रतिषेध्यम च आगमेन साधयति. क्या कहते? ये जो दोनों ही कर्म है वो बंध के कारण है. और कैसे है? प्रतिषेध्यम, प्रतिषेध यानी निषेध करने योग्य लायक योग्य है, एम आगमति सिद्ध करे छे. आपके कहने से क्या हमें तो आगम का प्रमाण दिखाओ, ऐसे कहने वाले होते ना, तो आगम से ये बात कौन? कुंकुंद आचार्य स्वयं. अब कहते यहाँ रत्तो बंधदि कम्मम मुच्चदि जीवो विराग संपत्तो एसो जिनो वदेसो રક્તો બધ્નાતિ કર્મ મુચ્યતે મુચ્યતે જીવો વિરાગ સંપ્રાપ્તઃ એષો જિનોપદેશ તસ્માત્ કર્મસુ મારજસ્વ જીવ રક્ત બાંધે કર્મને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત મુકાય છે એ જીન તણો ઉપદેશ તે કિનરાચતુ કર્મો વિશે જીવ રક્ત બાંધે કર્મને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત મુકાય છે એ જીન તણો ઉપદેશ તેથી નરાચ તું કર્મો વિશે. દેખો ગાથાર્થ મેં કહેતે હૈ રક્ત જીવ, રક્ત ને રાગી જીવ. હમ કહેતી ને અનુરક્ત શબ્દ આતા હૈ ને, એ રાગી, રક્ત ને રાગી, રક્ત જીવ ને રાગી જીવ કર્મ બધનાતી, કર્મ બાંધે છે, અને વિરાગ સંપ્રાપ્ત વૈરાગ્યને પામેલો જીવ મુચ્યતે અને કર્મથી છૂટે છે. એશ આ જીનોપદેશ, જીન ભગવાનનો ઉપદેશ છે. હમ કહે રહે એસા નહીં કહેતે આચાર્ય, જીનેન્દ્ર ભગવાન કા એસા ઉપદેશ હૈ. તસ્માત માટે હે ભવ્ય જીવ, તું કર્મસુ માં રજસ્વ, કર્મોમાં પ્રીતિ અને રાગ ન કર.
દેખો યહાં પર એક વિશેષતા એસી હૈ, 150 નંબર કી જો ગાથા હૈ પ્રાકૃત મેં, वहां भी उन्होंने जिनोवदेशो ऐसा कहा, और उसका जो संस्कृत में अमृत चंद्राचार्य ने जो ट्रांसलेशन किया वो जिनोपदेशः, और ऐसा ही गुजराती में जो बने हैं वो जिनो जिनतनो उपदेश। यानी यहाँ मूल बात तो देखो, जो समर्थ आचार्य है कुंद कुंद जैसे, वे भी मैं ये कहता हूँ इसलिए तुम मेरी बात मानो, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। तो जिनेन्द्र भगवान ने ये बात बताई है उनके उपदेश में, यानी उनके उपदेश को, उनके दिव्य ध्वनि को ही आगम कहा है। आगम यानी कोई शास्त्र प्रमाण नहीं बता रहे। और आप तब के जीव अपने जैसे नहीं थे। भाई जिनेन्द्र भगवान ने कहा था, हाँ किधर है बताओ, तुमको लेटर आया है क्या, ईमेल आया क्या है क्या, ऐसा वो उस जमाने के नहीं बोलते थे ख्याल में। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो रागी जीव है, यानी कौन सा, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वह कर्म को बांधता है हुँ? और वैराग्य ने पामेला जीव, यानी जो ज्ञानी हो चुके हैं, अभी पहले आए थे ना अरागी और ज्ञानी, तो ऐसा जो जीव है, तो वैराग्य जो पामेलो जीव, ये कर्मती छूटे छे। आवो जिनेन्द्र भगवान नो उपदेश छे, इसलिए हमें उपदेश दे रहे हैं कि हे भव्य जीव, तो अगर तुम उपदेश मानोगे तो तुम भव्य होगे, और नहीं मानोगे तो इसलिए लिखा है हे भव्य जीव तू कर्मों में प्रीति न कर। अभी टीका पढ़ते हैं। रक्त अर्थात रागी, रागी कौन तो जीव, अवश्य कर्म बांधे, अने विरक्त अर्थात विरागी ज कर्मती छूटे, एवु जे आ आगम वचन छे ते सामान्यपने रागीपनाना निमित्तपनाने लीधे शुभ अने अशुभ बन्ने कर्म ने अविशेषपने बंधना कारण तरीके सिद्ध करे छे। अभी यहाँ जो कर्म कर्म जो लिखा है ना, रागी जीव कर्म बांधे छे, तो ये कर्म यानी यहाँ शुभ और अशुभ भाव लेना, उसके कारण से जो कर्म बनते हैं उसकी बात है। अब यहाँ नीचे आते हैं हम पृष्ठ क्रमांक 63 मथाड़ू लिखा है ना, हवे बनने कर्मो बंधना कारण छे अने निषेधवा योग्य छे। अभी देखो, कर्म ही जो है, जो जड़ कर्म है, क्या वे जड़ कर्म ही कर्म का, कर्म बंधन का कारण होंगे कि नहीं? हाँ सौभाग चंद जी, हाँ नहीं, तो जो हमें कर्म बंध होता है वो कौन से आठ कर्मों में से कौन से कर्म के कारण से होता है? हाँ बहुत अच्छा। अभी यहाँ तो हम शुभ अशुभ भाव की बात लेंगे, मोह से भी होता है वो बात छोड़ देंगे अभी। तो मूल बात क्या है, मोहनी कर्म से होता है। तो यहाँ कह रहे हैं भावे बनने कर्मो, तो ये बनने कर्मो कहने से तो शुभ और अशुभ भाव ही लेना, और द्रव्य कर्म हम लेते हैं तो इमा बेक होया, तो घातिया ने अघाती ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कर्म का उदय से कर्म बनता नहीं है, बीच में जीव के परिणाम इसेंशियल है, क्योंकि वहां कर्म का उदय आए और जीव उसमें नहीं जुड़े तो नया कर्म नहीं बंधेगा ख्याल में। तो इसलिए कहते हैं अभी बनने कर्मो बंधना कारण छे अने ते केवा छे, क्योंकि निषेधवा योग्य छे, ए सिद्ध कर से। रक्त अर्थात रागी, आप लोग ये खून को क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं कि लोई? लोई रक्त नहीं होता है, हाँ हिंदी में भी खून,
ये लाल रंग को भी रक्त कहते हैं, रक्त वर्ण, यहाँ रागी की बात है।
यहाँ रागी जीव जो होता है ना, यानी आपके इसमें बहुत बार आता भी होगा ना, कोई किसी से ऐसे प्रेम शुरू करते तो वह अनुरक्त हो गया, ऐसा कहते हैं। भाषा नहीं है तुम्हारी है? अच्छा अच्छा ठीक है, तो सुखी है तुम। तो रक्त का अर्थ, ये संस्कृत शब्द है, यानी रागी। अवश्य कर्म बांधे, यानी रागी जीव अवश्य कर्म बांधता है। अने विरक्त अर्थात विरागी ज कर्मती छूटे। शुं कह्युं आ? के जेनो रागनो प्रेम छे रक्त, रागनो प्रेम छे अने राग साथे एकत्व छे ते रागी छे। क्या कहा? रागी किसको कहा? जेने रागनो प्रेम छे अने राग साथे एकत्व छे ते रागे छे। आय अस्थिरतानो राग होय एनी वात नथी। कोनी छे? तो मिथ्यात्विनी छे। आ तो जेने राग मा एकता बुद्धि अहम बुद्धि छे ते रागी छे एम वात छे। ज्ञानी ने अस्थिरतानो राग होय छे पण ते राग मा रक्त नथी, रुचिवंत नथी, तेथी ते विरागी छे। आ व्रत तप भक्ति इत्यादि करे तथा शास्त्रनी धारणा थवाती उपदेश दे अने बधी शुभरागनी क्रिया हूँ सारू करी रह्यो छूं, एटले धर्म कार्य करी रह्यो छूं अने ए वडे मारू हित थशे एम जे माने ते रागी छे अने ते जरूर कर्म बांधे छे। ये कर्म जो है ना, ये द्रव्य कर्म लेना। આગળની ગાથાની ટીકામાં અરાગી જ્ઞાની એમ શબ્દ આવ્યો છે, આગળની અને પહેલે કે પ્રાયર, મતલબ કે અરાગી વિરાગી છે તે જ્ઞાની છે અને જે રાગી છે તે અજ્ઞાની છે। અજ્ઞાની રાગમાં રક્ત છે તેને વિતરાગ સ્વભાવી ચૈતન્ય મૂર્તિ ભગવાન આત્મા ઉપર નજર નથી। આહાહા જીનપદ સ્વરૂપ પોતે છે એનો એને સ્વીકાર નથી। જેને પોતાનો એટલે આત્માનો સ્વીકાર નથી તે બીજે ક્યાંય પણ પોતાનું અસ્થિપનું તો માનશે જ ને। રાગ રહિત પોતાના નિર્મળ તત્વને જે જોતો નથી તે હું રાગ છું એમ જ જાણે છે અને માને છે। આવો રાગમાં રક્તરાગી જીવ અવશ્ય કર્મ બાંધે છે। ये तो बहुत आसानी से समझाया है कि जिसके अभी राग के प्रति राग है, उसके प्रति जो रुचि है, वह जो निश्चित रूप से अज्ञानी है कहो या मिथ्यात्वी है कहो। सामान्यपने दशमा गुणस्थान सुधी राग छे ते अपेक्षा है त्यां सुधी जीव रागी कहवाय छे, પણ અહીં એ વાત નથી। અહીં તો જેને રાગનો પ્રેમ છે, રાગમાં સ્વામીપણું છે, ધર્મબુદ્ધિ છે, વાહ, તેને રાગ એટલે રક્ત એટલે રાગી કયો છે। યાને રાગ કરને સે હી મુજે ધર્મ હોગા, શુભ ભાવ કરને સે હી ધર્મ હોગા, એસા માનને વાલા જો જીવ હૈ તો ઉસકો યહાં રાગી કહા ગયા। धर्मी ने साधक दशा में अस्थिरता नो राग यथासंभव आवे पण त्यां राग में तेने रुचि एटले पोषण नथी। धर्मी ने तो
देखो फिर पढ़ते इसको। धर्मी ने साधक दशा में अस्थिरता नो राग यथासंभव आवे। यथासंभव क्यों लिखा? हाँ, भूमिका के अनुसार जिस गुणस्थान में है उसके योग्य वहाँ भाव आते हैं, पण त्यां इतले राग मां तेने रुचि इतले पोषण नथी। वो राग करने जैसा है ऐसी उसकी मान्यता नहीं है, राग की रुचि नहीं है, फिर भी वो आते हैं, उसको वो जानता है। धर्मी ने तो पोतानो एक आत्मा ज पोसाय छे, उसको तो रुचि अपने एक आत्मा की ही रुचि है। अहीं कहे छे जेनी दृष्टि एक शुद्ध चैतन्य वस्तु पोताना आत्मा थी बंधाई छे, एवो विरक्त अर्थात विरागी ज कर्मती छूटे छे। विरक्त क्यों कहा, अभी तो राग है ना उसके पर्याय में। हाँ, राग में कर्ता स्वामित्व नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, करने जैसा ऐसा नहीं मान रहा है, इसलिए उसको विरागी कहा है। और विरागी कर्म थी छूटे छे, लो आ जिन भगवान नो उपदेश छे, ऐसे भगवान ने कहा है। कोई बाईडी छोकरा दुकान धंधो इत्यादि बाहर मां छोड़ी दे।
अब यहाँ जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसकी बात बता रहे हैं कि वो क्या कहता है, पहला हम पढ़ लेते फिर उसकी बात करेंगे। कोई बाईडी छोकरा दुकान धंधो इत्यादि बाहर मां छोड़ी दे, माटे ते वैरागी छे एवो विरक्त नो अर्थ नथी। वो तो बैरागी है, वैरागी नहीं है। क्या कहा? आई तो जेने अंतरमा परनियटे रागनी रुचि छूटी गई छे, अने जेने आनंदनो नाथ वितराग स्वभावी शुद्ध चैतन्य में आत्मानी दृष्टि रुचि ज्ञान ने अनुभव थया छे, ए विरक्त एटले विरागी छे, अने तेज कर्मती छूटे छे, एवू आगम वचन छे। जो पाठ में मूल गाथा में जिनोपदेश शब्द छे एनो अर्थ अहीं टीका में आगम वचन लीधो छे। जिनोपदेश अर्थात जिनवानी अनुसार आगम रचाया छे, तेथी जिनोपदेश ने अर्थ जिनोपदेश नो अर्थ आगम वचन करियो छे।
ते आगम वचन शू छे, आगम में क्या बताया इसके बारे में? तो कहते हैं कि राग मां एकता वालो रागी जीव अवश्य कर्म बांधे छे। राग में जिसकी एकता बुद्धि है, राग मेरा स्वरूप है करने जैसा है, और शुभ राग आता है तो अपने को थोड़ा अच्छा मानता है, मैं मोक्ष मार्ग पर आगे जा रहा हूं ऐसा मानता भी है, वो अवश्य कर्म बांधे छे। अने जेने रागनी एकता तूटी गई छे ते विरागी जीवज कर्म थी मुक्त थाय छे। ज लगाए उसमें आ दृष्टि अपेक्षाए कथन छे। ये जो विरागी कहा है वो दृष्टि अपेक्षा उसको विरागी कहा है, यानी श्रद्धा की अपेक्षा। उसको राग में रुचि नहीं है, उसके साथ एकत्व बुद्धि नहीं है, और उसको उसने हेय माना है, उपादेय नहीं माना है, इसलिए दृष्टि अपेक्षाए कथन छे। बाकी ज्ञानी विरागी होवा छता दशमा गुणस्थान सुधी तेने जेटले अंशे राग छे एटला अंशे बंधन छे। ये बात कहाँ है, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है। तीन गाथाएं हैं। हाँ, ये समय सार में नहीं है, पुरुषा सिद्धि उपाय में है। हाँ, वहाँ ऐसा लिखा है जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में बंध नहीं है, परंतु जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। जितने अंश में ऐसे सबके साथ ज्ञान दर्शन चारित्र के साथ लगाए हैं, यानी ये राग के साथ ज्ञान के साथ भी राग की तुलना की। तो ज्ञान से बंध नहीं है, राग से ही बंध है, इस तरह से वहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिए। वही बात यहाँ क्या कहते हैं कि ज्ञानी तो अभी विरागी हो गए, राग की रुचि नहीं है, राग में एकत्व नहीं है, करने जैसा मानते भी नहीं है, परंतु जितने अंश में राग अभी पर्याय में है उतने अंश में उनके बंधन भी है। अहीं दृष्टि ने प्रधान करीने राग ने रुचि जेने नाश पामी छे एवा ज्ञानी ने वर्तमान मां किंचित पुण्य पापना भाव होवा छता। देखो, महाव्रत के भाव हो गए उसको भी क्या कहा, किंचित भाव का। और जो मिथ्यात्व दशा में जो मुनि योग्य व्रत अंगीकार करेगा उसको किंचित है कि बहुत है? हाँ, उसको कितना है पुण्य पाप का भाव, किंचित है कि ज्यादा है? हाँ, क्या कहते मुझे यार?
निरंतर है।
नहीं, उसको किंचित थोड़ा नहीं, वो बहुत है, क्योंकि अनंतानुबंधी के वश उसने ये सारा अंगीकार किया है, राग में एकत्व है उसके, तो उसको किंचित नहीं कहेंगे। मुनि के भाव को किंचित कहेंगे क्योंकि एकमात्र संज्वलन कषाय है वहां पर, उनके मंदिर राग है और वो राग में एकत्व बुद्धि है नहीं है, फिर भी जो पुण्य वहाँ उत्पन्न होता है उसको किंचित कहा है। यहाँ तो पुण्य पाप दोनों लिए, तो चौथे वाले को पुण्य भी है और पाप भी है, क्योंकि वो भी गृहस्थी में है ना, तो उसके पाप भाव भी होगी, उसके योग्य भूमिका योग्य वहाँ पाप भाव भी है उसके, परंतु उसकी रुचि नहीं है उसमें, एकत्व तो नहीं है, तो ये होने पर भी उसको विरागी कहा है। विरागी ज कर्म थी छूटे छे, त्या विरागी नो एवो अर्थ नथी कि कोई बहार थी वस्त्रादि बधु छोड़ी दे, साधु थाय अने पंच महाव्रत पाळे, माटे ते विरागी छे। विरागी का अर्थ ये घर बार संसार छोड़कर वन में चला गया वो विरागी हो गए, वो बात नहीं है। आत्मा के अनुभव के बिना कितने भी महाव्रत आदि पाले, ये बात आती है ना, अनंत वार मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेवे के उपजायो, तो जैसा जिनेन्द्र भगवान ने मुनि का आचरण कहा है वैसा आचरण पालता है, परंतु अंतरंग में उनके आत्मा का भान नहीं है, तो उनके हाथ कछु ना आयो। तो ऐसे अनंत बार भी मुनिव्रत धारण करेगा तो भी उनका एक भी ये भव का फेरा कम नहीं होगा। तो कहते हैं ये विरागी शब्द आपने सुना है, जो विरागी होकर ग्रस्त मुनि दशा अंगीकार करके कहाँ आया, हाँ हाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मुनि का स्वरूप अरहंत का स्वरूप उसमें आता ही है, ये विरागी का अर्थ है विरक्त होकर। परंतु जेने अंतर मां राग नी रुचि छूटता, वीतराग स्वभावी शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्माना आनंदनी स्वानुभव दशा प्रकट था है, आत्मा के आनंद की अनुभूति जिसको होगी ते विरागी छे, तभी उसको तो आत्मा में रुचि है और राग की रुचि उसकी छूट गई है। अभी जो आत्मा के अनुभव के बिना जो व्रतादि पालन करते हैं उसको तो व्रतादि पालन करने के जो भाव है उसमें एकत्व पना है, उसकी बहुत रुचि है, उसको व्रत पालन करने की तीव्र रुचि है उसके, वो आनंदानुबंधी का कार्य चल रहा है। और यहाँ कौन सी बात है कि राग की रुचि तो छूट गई है, अंदर स्वभाव की रुचि हो गई है और स्वानुभव दशा प्रकट थाय ते विरागी छे। पुण्य पाप ना बन्ने भाव थी जे वैराग्य पामे ते विरागी छे। किससे वैराग्य होना है, पुण्य पाप के भाव से। हमें किसका वैराग्य आता है, ये हमारा घर में झगड़ा होता है तो हमें दूसरों के प्रति वैराग्य हो जाता है उस वैराग्य की बात यहाँ नहीं है। तो कहते पुण्य पाप ना बन्ने भाव थी, बन्ने लिया हो ये हमको पाप से तो वैराग्य आया, मगर पुण्य में बहुत रुचि अभी है उसकी बात यहाँ नहीं है। पुण्य पाप ना बनने भाव थी जे वैराग्य पामे ते विरागी छे अने तेज कर्म थी छूटे छे। परंतु कोई पाप ना परिणाम थी तो वैराग्य पामे, पण पुण्य परिणाम ना प्रेम मा रहे तो ते विरागी नथी पण रागी छे। क्या लिखा यहाँ, पाप के परिणामों के प्रति तो द्वेष हो गया है, उनको तो छोड़ना चाहता है, और पुण्य परिणाम में रुचि है, बहुत रुचि पड़ी है, अनेते कर्म थी अवश्य बंधाए छे। जो ऐसे जीवों को तो जो लौकिक में भले भी कहते अरे कितना धार्मिक है कितना आगे बढ़ा है ऐसा कहते ना, परंतु उसके पुण्य की रुचि पड़ी है अंदर तो वो विरागी नहीं कहलाएगा। एवं आगम वचन छे, अर्थात एवं भगवान ना उपदेश में आयु छे। केटलाक कहे छे, केटलाक कहे छे ने अभी समझ गए होगे, हाँ केटलाक कहे छे जो एकला अशुभ राग में रचा पचा रहे छे तेमने शुभ राग करवानो कहो तो। ये तो दुनिया आजकल कहाँ चल रही है, तो उनको इकट्ठा करके शुभ के तरफ ले जा रहे हम हजारों की संख्या में, तो अच्छा है कि नहीं मिलिंद भाई। तेने कहिए छे के भाई शुभ राग ये क्या नवी चीज छे, ये किसकी महत्ता आती है, इतने यंगस्टर्स को इकट्ठा किया है, उनके मध्य छुड़वाया है और सब कुछ छुड़वाया है, और आते हैं क्यों तो कहते शुभराग ये क्या नवी चीज छे, अनादि थी ते शुभाशुभ भाव तो करतो जायो छे। ऐसा कोई भी जीव नहीं तो अनादि थी खाली शुभ का शुभ ही करता रहे, अशुभ ही अशुभ ही करता रहे। उसकी लिमिट एक अंतर्मूर्त की है, अंतर्मूर्त के बाद वो भाव पलटेगा ही। तो अनादि से ही यह जीव शुभ अशुभ शुभ अशुभ करता आया है। ए निगोद महतो त्यारे पण, तब भी की बात है, शुभाशुभ भावना परिणाम वारा फरती करतो जातो, पलट कर वो शुभ कभी अशुभ कभी शुभ कभी अशुभ वो होते ही था। अरे आजे निगोद मा एवा जीवो अनंत छे जे कदी त्रसपणू नहीं पामे। क्या कहते हैं, अभी भी इतने ऐसे निगोद में जीव है, नित्य निगोद है, वो तीन काल में कभी भी त्रसपना पाएंगे नहीं, द्विन्द्रियादिक अन्य पर्याय में नहीं आएंगे, कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि नहीं तो निगोद नष्ट ही होगा ना, ऐसा कभी होगा ही नहीं। 14 के 14 जीव समास हमेशा हो गए ही हो गए, निगोद से रहित हो जावे, सभी निगोद वहां से निकल कर एकेंद्रिय में द्विन्द्रिय में आदि में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तेमने पन अभी वो निगोद के निगोद में ही रहते तो अशुभ भाव से रहेंगे ना, वहां शुभ भाव भी आते हैं, तेमने पन शुभ भाव थाय छे। घड़ीक मां अशुभ ने घड़ीक मां शुभ एम परिणाम नी धारा त्या निरंतर चाले छे, अंतर छूटे बिना निरंतर, यानी शुभ निरंतर चलता है ऐसा नहीं कहा, शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ ये निरंतर चल रहा है। त्या दयादान पूजा भक्ति इत्यादि काई छे नहीं, पण शुभ ने अशुभ भाव तो त्या थयाज करे छे। हमें लगता है कि हम दयादान भक्ति आदि करते तो हमें शुभ भाव होता है, तो वो निगोद क्या करते होंगे, प्रश्न आता है ना, इन्हें किसी क्रिया में शुभ माना है, नहीं समझे कि मंदिर में रहने वाले निगोद शुभ भाव करते होंगे ना, और किसी स्थान से उनके उनको क्या लेना है, वो तो एक स्पर्शन इंद्रिय के जानकार है, वो तो मंदिर में हो या सिद्धशिला में हो जो आसपास हो या सिद्धों के प्रदेशों में रहते हो, उनसे क्या लेना देना। तो ये तो शुभ और अशुभ भाव उनके भी नित्य हो रहे हैं भाई। शुभ भाव एक कहीं अपूर्व चीज न थी, हमें लगता है अरे हम कर रहे हैं, देखो हम कितने आगे बढ़ गए, लोग भी मानते ना, अरे आप तो कितने आगे बढ़े, हम तो साथ साथ में पढ़ते थे, आप बहुत आगे बढ़ गए। तो आगे किस में बढ़ गए, शास्त्र स्वाध्याय में बढ़े, और किस में बढ़े, तो उसको ये पुण्य को ही आगे बढ़े मानता है। आत्मभान बिना तू नवमी ग्रह वेग जाए एवा शुक्ल लेशाना। क्या कहते, आत्मा का भान है ही नहीं है फिर भी नवे ग्रह वेग है, नवे ग्रह वेग कहाँ है, 16 स्वर्गों के ऊपर, वहां कौन जीव जा सकेंगे मरकर, हाँ द्रव्यलिंगी मुनि यानी मिथ्यात्व दशा में जाने वाला द्रव्यलिंगी, तो भावलिंगी तो जाएंगे उसमें कोई नवय नहीं है, परंतु मिथ्यात्व अवस्था में भी द्रव्यलिंग धारण करने वाले वहां जा सकते हैं, परंतु वो है कैसे, द्रव्यलिंगी कहा ना, उसमें वो आत्मभान बिना के है, आत्मज्ञान नहीं है, वो समय दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसे नवमी ग्रह वेग जाए एवा शुक्ल लेशाना शुभ भाव, तो वहां जाने के जो द्रव्यलिंग धारण करने के परिणाम है वो शुभ है कि अशुभ है, द्रव्यलिंग धारण करने के परिणाम शुभ है कि अशुभ है, नलिन भाई, अरे शुभ भाव है, महाव्रत के परिणाम है ना, वो मुनि दीक्षा लेने के भाव शुभ भाव है, उसमें कुछ कैच नहीं मेरे प्रश्न में। तो कैसे शुभ भाव है, शुक्ल लेशा के परिणाम, लेशा के अलग अलग भाव है ना, कृष्ण से लेकर शुक्ल लेशा तक, तो ग्रहवेग में जाने वाले शुक्ल लेशा वाले होते हैं जी, शुक्ल लेशा के परिणाम है उनके। ये शुक्ल लेशा के परिणाम कौन से गुणस्थान में होते हैं,
हाँ, बोलो,
हाँ 1 से 13, એને પહેલે ગુણસ્થાન વાલે કે ભી એ અશ્વિનભાઈ તો સબ જાનતે લેશા મેં તો પરફેક્ટ હે સબ એ તો કરુણાની યોગ કે માસ્ટર હે તો શુક્લ લેશાના શુભ ભાવના પરિણામ તને અનંત વાર થયા છે પણ તેથી શું વહા ગ્રેવેગ કા કુછ વહા કે ઉસકે બાદ ફિર દોબારા નીચે આયેંગે કહાં જાયેંગે મનુષ્ય મેં કે તિર્યંચ મેં ગ્રેવેક મેં સે મરકર કહાં જાયેંગે એક કેન્દ્રીય મેં તો જાયેંગે કે નહીં
નલિન ભાઈ કુછ બતા રહે
હાં નલિન ભાઈ ક્યા કહેતે એસા નિયમ ને જૈસા કરે વૈસે હાં
ક્યા કહેતે આપ પ્રતિભા જાયેંગે કે નહીં નરક મેં તો નહીં જાયેંગે
હા હા હા
દેવગતિ મેં નહીં જાયેંગે તો દુઃખ
આપ કહેતે સ્વર્ગ કે દેવ નિયમ સે એકેન્દ્રીય મેં જાતે હૈ કહાં સુના મિથ્યા દૃષ્ટિ અસંખ્યાત જીવ હૈ વહાં પર મિથ્યા દૃષ્ટિ ભી યહાં આતે હૈ ને સ્વર્ગ કા જીવ એકેન્દ્રીય મેં જાતા હૈ એસા નિયમ નહીં હૈ મિથ્યા દૃષ્ટિ
એસા
નિયમ નહીં હૈ और वो जाने वाले सभी स्वर्गों को नहीं लेना एक केंद्रीय में जाने वाले तो भवनत्रिक के या सौधर्म ईशान वाले उसमें भी जो अत्यंत संक्लेश परिणाम से मरते हैं हाँ वो एकेंद्रीय के तिरंचों की आयु बांध के एकेंद्रीय में भी जा सकते हैं मेरा प्रश्न ग्रेवेक संबंधी था हाँ बोलो हाँ मनुष्य में ही जन्म लेंगे ऐसा क्यों स्वर्ग में से तिर्यंच में भी जा सकते हैं परंतु कौन से स्वर्ग तक के जीव मरकर तिर्यंच और मनुष्य दो ऑप्शन है हाँ बोलो प्रेरणा बेन हाँ बार में ते सतार सदर चौक का कहते ना सतार सहस्रार तक के जो जीव है वो मरकर वहां तक के जीव मनुष्य या तिर्यंच दोनों में से कोई भी आयु बांध सकते हैं और ऊपर के जो नियम से मनुष्य में आएंगे अभी ग्रेवेक में जो है वो नियम से मनुष्य ही होंगे
सोलहवें स्वर्ग के ऊपर है ना वो नव ग्रेवेक तो तेरहवें चौदहवें पंद्रहवें सोलहवें स्वर्ग से और ऊपर के जो नव ग्रेवेक है अनुदिश अनुत्तर
अनुदिश अनुत्तर वो तो सारे सम्यक दृष्टि है और मतलब सम्यक दृष्टि मनुष्य ही होंगे
सारे मनुष्य ही होंगे
परंतु ग्रेवेक के मिथ्या दृष्टि भी नियम से मनुष्य में जन्म लेंगे बाद में आगे का जो कुछ है वो तो उनके अधीन परिणामों के अधीन कहीं तिर्यंच में भी जाएंगे या निगोद में भी जाएंगे उसकी कोई ना नहीं परंतु डायरेक्ट नहीं जाएंगे केंद्रीय में ना ही तिर्यंच में जाएंगे हाँ देखो हम यहाँ आए हैं
करुणानियों के नियम समझने से अच्छा लगता है क्योंकि हमने एक बार पढ़ा है ना कि स्वर्ग में जाए वहां से एक इंद्रिय चय के एक इंद्रिय था तो सबको भेज दिया अपन फटाफट पूरी परमिशन
अभी वो तो शॉर्ट में बताया है छड़ाला जो है कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो ऐसा लगता है वहां से चय कर सब स्थावर चंदन ऐसी बात नहीं क्योंकि अभी उसमें कितना लिखेंगे फिर भी बहुत सारा उन्होंने शॉर्ट में बता दिया है तो जितना विस्तार से जानेंगे वहाँ कहा है ना वो ये पीठिका में कहा है समय ज्ञान चंद्रिका के सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेष बलवान भवित स्थूल रूप से सामान्य रूप से कोई कथन होता है और उसके डिटेल में जानकर अगर हम देखते हैं तो और उसमें दृढ़ता आती है उसमें अधिक हमें समझ में आ जाता है मार सामान्य कथन अलग होता है देखो पण तेथी शू यानी ग्रेवेक में अनंत बार वहां जाने के लिए उस अनंत बार मनुष्य पर्याय होकर जैनी होकर मुनि धर्मांगीकार दुर्लभ में दुर्लभ जितना ये मनुष्य भव है वो अनंत बार यानी कितना टाइम उसने गमाया है फिर भी आत्मा के भान बिना उसको कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं उसके हाथ में आया ऐसा था ना अज्ञानी करोड़ों भवों तक तप तपे तो भी उसकी जितनी कर्मों की निर्जरा नहीं होती उतनी ज्ञानी की एक क्षण में हो जाती है ये असंख्यात गुणा समय प्रबद्ध असंख्यात उसके खिर जाते हैं और इसके उतने असंख्यात भव भी वो चले जाए तो भी उसकी उतनी निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि कर्म तो सभी प्रकार के वो बांध रहे, मिथ्यात्व है तो सब वो चलता ही रहता है। मिथ्यात्व के छूटे बिना उसका इसमें से कुछ बाहर निकलने का मार्ग है, उसकी मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा शुरू नहीं होती। देखो त्यारे ते वो कहे छे के ए शुभ भाव थी पुण्य बंधायो अने तेथी ते मनुष्य थयो अने तेने धर्म सांभळवा मळ्यो, आ लाभ तो थयो ने। अभी भी क्या करना चाहते हम, शुभ भाव करके स्वर्ग में जाएंगे या किसके पास जन्म लेंगे? सीमंद्र भगवान के पास जाना है ना, विदेह क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र कितना लंबा बड़ा है, वहां का मलेंच होगा तो क्या होगा। और वो भी सीमंदर ही चाहिए, जुगमंदर वो नहीं चलेगे। तो ये कहते हैं, देखो बापू एवं तो अनंत वार सांभळ्यू। देखो तीर्थंकर के पास जाकर भी दिव्य ध्वनि इसने अनंत बार सुनी है, पण राग नो प्रेम छूट्या वगर तारो सांभळेलू बधुज निरर्थक गयू। केम के शास्त्र नु तात्पर्य तो वीत राखता छे, शास्त्र सांभळीने पण तने रागनी रुचि न छूटी અને સ્વભાવની દૃષ્ટિ ન થઈ, તેથી તું શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય પામ્યો જ નહીં। શાસ્ત્ર કા તાત્પર્ય, શાસ્ત્ર સમજને કા સુનને કા ફાયદા ક્યા થા, ઉસમે સે જો મર્મ સમજના થા કે રાગ કી રુચિ છૂટ કર અપને સ્વભાવ કી રુચિ હો જાતી, તો ઇસકે તો રાગ કે હી પ્રેમ મે રહે ગયા, શુભ ભાવ મે। અભી હમારી વાત કરેંગે તો સ્વાધ્યાય કે પ્રેમ મે અટક ગયે, સ્વાધ્યાય મે જો સમજા થા ઉસકે દ્વારા સ્વરૂપ કી दृष्टि करना है, स्वभाव की दृष्टि करना है, स्वभाव की रुचि है, ये होगा हो स्वाध्याय की रुचि भी होगी, क्योंकि सत्संग होगा, ज्ञानी का समागम होगा, ज्ञानी के वचन हम पढ़ेंगे इसमें, तो उनकी बात उनका मर्म ख्याल में आएगा। परंतु इतने मात्र से संतुष्ट होकर काम नहीं चलेगा। उसमें जो मुख्य बात बताई, जो दुर्लभ में दुर्लभ है, सुनने को भी जो नहीं मिलती है, परंतु सुनकर समझकर अपने स्वभाव की रुचि होनी चाहिए, स्वाध्याय के प्रेम में नहीं। ये कहां अटक गए? देखो राग नो प्रेम छूटा वगर, स्वाध्याय छूटा वगर नहीं कहा, उसमें जो राग है, तीव्र रुचि है, वो तो समझना चाहिए, परंतु समझकर उसमें जो लिखा है, उसमें जो हमने समझा है, वो क्या समझा है, तो वीतरागता कैसे हासिल करना। तो शास्त्र का जो तात्पर्य वीतरागता है, तो शास्त्र सांभळीने पण तने रागनी रुचि न छूटी अने स्वभावनी दृष्टि न हुई, स्वाध्याय करके भी राग की रुचि छूटी नहीं, स्वभाव की दृष्टि नहीं हुई, तेथी तू शास्त्रनु तात्पर्य पाम्यो ज नहीं। ऐसा लोगों को लगता है अभी और कितने शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें समय दर्शन हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है। शास्त्र का तात्पर्य वीतरागता है, उसको समझकर अपनी स्वयं की दृष्टि हो जावे तो ही वीतरागता प्राप्त होगी। चाहे प्रथमानुयोग हो के करणानुयोग हो, चरणानुयोग हो के द्रव्यानुयोग हो, दरेकनु तात्पर्य वीतरागता छे। कहीं सुना है आपने ये कहां लिखा हुआ? चारे अनुयोग नो तात्पर्य वीतरागता। हाँ हाँ, नहीं मालूम, पंचास्तिका में आई बात। हाँ, शास्त्र का तात्पर्य सूत्र, ये वीतरागता है, और सूत्र ने अलग, गाथा का तात्पर्य अलग अलग होगा, परंतु सभी शास्त्रों का तात्पर्य तो वीतरागता है। ए निमित्तनी उपेक्षा करीने स्वभावनी अपेक्षा करवी, ए बधानु तात्पर्य छे। कौन से निमित्त की उपेक्षा करना है? क्या पढ़ा? हाँ हाँ, निमित्त भी शास्त्र निमित्त है ना, उनका तात्पर्य भी वीतरागता है। तो निमित्त नी उपेक्षा करीने स्वभावनी अपेक्षा करवी, ए बधानु तात्पर्य छे। शास्त्र का तात्पर्य क्या है? शास्त्र कह रहे हैं मेरा लक्ष्य छोड़ो और अपना लक्ष्य करो। शास्त्र का ही तात्पर्य, शास्त्र में ही उपदेश आ रहा है कि तुम स्वभाव की दृष्टि करो। तो निमित्त नहीं उपेक्षा करी ने, अब ये द्रव्यानियोग के कर्णानियोग सभी का तात्पर्य क्या है? तो उसमें से निकालना क्या है हमें? तो वितरागता निकालनी है हमने। हम स्वभाव की महत्ता कैसे आ जाएगी, स्वभाव का लक्ष्य कैसे होगा, इस तरह से उसको हमको पढ़ना और सुनना और समझना है। खाली उसके कितने कर्म प्रकृति उसको याद करना, वो कर्णानियोग का प्रयोजन नहीं है। कोई भी अनुयोग हो तो उसमें से अपने स्वभाव का कैसे लक्ष्य हो। कर्म को हम अपना स्वरूप मान रहे थे, कर्म के उदय के जो फल है उसमें, उनसे अपना भेद ज्ञान कैसे हो, ये प्रयोजन होना चाहिए। हर बार प्रयोजन तो अपनी दृष्टि होनी चाहिए, और वो उसमें से कैसे हासिल करती है, ये महत्व की बात है। सच्चा व्यापारी किसको कहेंगे? हीरा का व्यापार करता है वो, क्या अभी वो चिंदी का व्यापार करता है किसको कहेंगे? कौन से चीज का व्यापार कर रहा है वो, कितना मुनाफा उसमें से ले रहा है, क्या बेच रहा है ना, वो व्यापारी क्या है कि उसमें से मुनाफा कैसे हासिल करना है। देखो मुंबई में कितने प्रकार के व्यापारी, कोई हीरे का है, कोई कपड़े का है, कोई सोने का व्यापारी है, अन्य कोई बर्तन का है, कोई कागज का है, कितने व्यापार है। तो हर एक का प्रयोजन क्या हो रहा है उसमें से अधिक मुनाफा कैसे हो। वैसे हमें कौन सा शास्त्र पढ़ना है, तो जिसमें से हमें वितरागता निकालनी है। चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य तो वितरागता है। क्या भगवान ने चारों अनुयोगों का उपदेश किया तो फिजूल का किया होगा ना, बिना वितरागता का। तो एक कर्म की थियरी क्यों बताई हमें, बोझ हो इसलिए हमें प्रेरणा मिल। इस सुबह धौला में वो भागार का प्रकरण आता है तो सब भागा भागी हो जाती ए निमित्त नी उपेक्षा करीने स्वभावनी अपेक्षा करवी ए बधानु तात्पर्य छे। परंतु स्वभावनी अपेक्षा करी नहीं अने खाली वाणी सांभळी एमां तने शुं लाभ थयो? स्वभाव की रुचि हुई नहीं और अभी हमने 20-20 साल तक वाणी सुनी, शास्त्र पढ़े, तो उसमें हमें क्या लाभ हुआ? काई नहीं समझाणो काई भाई, वितरागनो मार्ग बहु झीणो छे बापू। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सदा वितराग स्वरूप छे। कभी वितराग होगा वो? सदैव त्रिकाल वितराग स्वरूप, वितराग उसका स्वभाव है। देखो हम सर्वज्ञ स्वभावी है ये तो मान्य करते हैं, तो सर्वज्ञ स्वभावी जो आत्मा है वो वितराग स्वभावी होगा कि नहीं होगा? हाँ पर्याय में वितरागी हुए बिना सर्वज्ञ नहीं हो सकता, तो स्वभाव में भी वितरागी और सर्वज्ञता साथ में होगे कि नहीं होगे? न्याय से समझना चाहिए। स्वभाव तो सर्वज्ञ है तो स्वभाव वितरागी भी होना ही चाहिए, क्योंकि जो स्वभाव में है वही तो पर्याय में प्रकट होगा। तो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सदा वितराग स्वरूप अच्छे। वितराग स्वरूप कहो के अकषाय स्वरूप कहो ते एक अच्छे। स्वभाव में कषाय है ही नहीं है, वो कषाय है भगवान आत्मा मा। कषाय ना विकल्पनी गंधपन क्या छे? भगवान आत्मा तो सदाय अनाश्रवी छे, अनाश्रवी छे, आश्रव वगरनो छे, अबंध छे, अनाकुल छे। क्योंकि ये आकुलता क्या है? राग ही आकुलता है। अने आजे पुण्य पापना भावो छे ए तो बन्ने आश्रव रूप, बंध रूप, आकुलतामय, दुख रूप छे। ये आश्रव कैसे है वो तो बात आई थी ना अपने, ए पुण्य पापना भावो मारा छे एम जे माने ते रागी अवश्य कर्मथी बंधाय छे। अने जे पुण्य पापथी रहित शुद्ध चैतन्यमय आत्मानो अनुभव करे छे ते कर्मथी मुक्त थाय छे। आ जिन वचन आगम वचन छे, बाकी बात कल करेंगे।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक
સોવાણી મસ્તક નવો સદા દેત હોડો. મિલિંદા